यर्मिया बाब 3। रब फरमाता है, अगर कोई अपनी बीवी को तलाक दे और अलग होने के बाद बीवी की किसी और से शादी हो जाए तो क्या पहले शौहर को उससे दोबारा शादी करने की इजाजत है? हरगिज नहीं, बल्कि ऐसी हरकत से पूरे मुल्क की बेहुर्मती हो जाती है। देख, यही तेरी हालत है। तूने मुतअद्दिद आशिकों से जना किया है और अब तू मेरे पास वापस आना चाहती है। ये कैसी बात है? अपनी नजर बंजर पहाड़ियों की तरफ उठाकर देख, क्या कोई जगह है जहां जना करने से तेरी बेहुर्मती नहीं हुई? रेगिस्तान में तन्हा बैठने वाले बद्दू की तरह तू रास्तों के किनारे पर अपने आशिकों की ताक में बैठी रही है। अपनी असमत फरोशी और बदकारी से तूने मुल्क की बेहुर्मती की है। इसी वजह से बाहर में बरसात का मौसम रोका गया और बारिश नहीं पड़ी। लेकिन अफसोस, तू कस्बी किसी पेशानी रखती है। तू शर्म खाने के लिए तैयार ही नहीं। इस वक्त भी तू चीखती चिल्लाती आवाज देती है, ऐ मेरे बाप जो मेरी जवानी से मेरा दोस्त है, क्या तू हमेशा तक मेरे साथ नाराज रहेगा? क्या तेरा कहर कभी ठंडा नहीं होगा? यही तेरे अपने अल्फाज हैं, लेकिन साथ साथ तू गलत काम करने की हर मुमकिन कोशिश करती रहती है। योसियाह बादशाह की हुकूमत के दौरान रब मुझसे हम कलाम हुआ, क्या तूने वो कुछ देखा जो बेवफा इसराइल ने किया है? उसने हर बुलंदी पर और हर घने दरख्त के साये में जना किया है। मैंने सोचा कि ये सब कुछ करने के बाद वो मेरे पास वापस आएगी, लेकिन अफसोस ऐसा न हुआ। उसकी गद्दार बहन यहूदा अभी इन तमाम वाकयात की गवाह थी। बेवफा इसराइल की जनाकारी नाकाबिले बर्दाश्त थी, इसलिए मैंने उसे घर से निकालकर तलाकनामा दे दिया। फिर भी मैंने देखा कि उसकी गद्दार बहन यहूदा ने खौफ न खाया, बल्कि खुद निकलकर जना करने लगी। इसराइल को इस जुर्म की संजीदगी महसूस न हुई, बल्कि उसने पत्थर और लकड़ी के बुतों के साथ जना करके मुल्क की बेहुर्मती की। इसके बावजूद उसकी बेवफा बहन यहूदा पूरे दिल से नहीं, बल्कि सिर्फ जाहिरी तौर पर मेरे पास वापस आई। ये रब का फरमान है। रब मुझसे हम कलाम हुआ, बेवफा इसराइल गद्दार यहूदा की निस्बत ज्यादा रास्तबाज है। जा, शुमाल की तरफ देखकर बुलंद आवाज से ऐलान कर, ऐ बेवफा इसराइल, रब फरमाता है कि वापस आ। आइंदा मैं गुस्से से तेरी तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं मेहरबान हूं। मैं हमेशा तक नाराज नहीं रहूंगा। ये रब का फरमान है। लेकिन लाजिम है कि तू अपना कसूर तस्लीम करे, इकरार कर कि मैं रब अपने खुदा से सरकश हुई। मैं इधर उधर घूमकर हर घने दरख्त के साए में अजनबी माबूदों की पूजा करती रही। मैंने रब की न सुनी। ये रब का फरमान है। रब फरमाता है, ऐ बेवफा बच्चों, वापस आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूं। मैं तुम्हें हर जगह से निकालकर सियोन में वापस लाऊंगा। किसी शहर से मैं एक को निकाल लाऊंगा और किसी खानदान से दो इफराद को। तब मैं तुम्हें ऐसे गल्लाबानों से नवाजूंगा जो मेरी सोच रखेंगे और जो समझ और अकल के साथ तुम्हारी गल्लाबानी करेंगे। फिर तुम्हारी तादाद बहुत बढ़ेगी और तुम चारों तरफ फैल जाओगे। रब फरमाता है, उन दिनों में रब के अहद के संदूक का जिक्र नहीं किया जाएगा, न उसका ख्याल आएगा, न उसे याद किया जाएगा, न उसकी कमी महसूस होगी, न उसे दोबारा बनाया जाएगा, क्योंकि उस वक्त यरूशलम रब का तख्त कहलाएगा और उसमें तमाम अकवाम रब के नाम की तालीम में जमा हो जाएंगे। तब वो अपने शरीर और जिद्दी दिलों के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे। तब यहूदा का घराना इसराइल के घराने के पास आएगा और वो मिलकर शुमाली मुल्क से उस मुल्क में वापस आएंगे जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को मीरास में दिया था। मैंने सोचा, काश मैं तेरे साथ बेटों का सा सलूक करके तुझे एक خوشگوار ملک دے سکوں، ایک ایسی میراث جو دیگر اقوام کی نسبت کہیں شاندار ہو۔ میں سمجھا کہ تم مجھے اپنا باپ ٹھہرا کر اپنا منہ مجھ سے نہیں پھیرو گے، لیکن اے اسرائیلی قوم، تو مجھ سے بے وفا رہی ہے، بالکل اس عورت کی طرح جو اپنے شوہر سے بے وفا ہو گئی ہے۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ سنو، بنجر بلندیوں پر چیخیں اور التجائیں سنائی دے رہی ہیں، اسرائیلی رو رہے ہیں اس لیے کہ وہ غلط راہ اختیار کر کے رب اپنے خدا کو بھول گئے ہیں۔ اے بے وفا بچوں، واپس آؤ تاکہ میں تمہارے بے وفا دلوں کو شفا دے سکوں۔ اے رب، ہم حاضر ہیں، ہم تیرے پاس آتے ہیں، کیونکہ تو ہی رب ہمارا خدا ہے۔ واقعی پہاڑیوں اور پہاڑوں پر بت پرستی کا تماشا فریب ہی ہے۔ یقیناً رب ہمارا خدا اسرائیل کی نجات ہے۔ ہماری جوانی سے لے کر آج تک شرمناک دیوتا ہمارے باپ دادا کی محنت کا پھل کھاتے آئے ہیں، خواہ ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل تھے، خواہ ان کی بیٹے بیٹیاں۔ آؤ، ہم اپنی شرم کے بستر پر لیٹ جائیں اور اپنی بے عزتی کی رضائی میں چھپ جائیں، کیونکہ ہم نے اپنے باپ دادا سمیت رب اپنے خدا کا گناہ کیا ہے۔ اپنی جوانی سے لے کر آج تک ہم نے رب اپنے خدا کی نہیں سنی۔